بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, प्रतिबंधनों का पूर्ण रूप से पालन करो। तुम्हारे लिए चौपायों की जाति के सब जानवर हलाल किए गए, सिवाय उनके जो आगे चलकर तुम्हें बताए जाएंगे, लेकिन इहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना कर लो। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की निशानियों का निरादर न करो। हराम महीनों में से किसी को हलाल न कर लो। कुर्बानी के जानवर पर हाथ न डालो, न उन जानवरों पर हाथ डालो जिनकी गर्दनों में नजर कर देने की निशानी के तौर पर पट्टे पड़े हुए हों, न उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता की तलाश में प्रतिष्ठित घर यानी काबा की ओर जा रहे हों। हाँ, जब इहराम की हालत समाप्त हो जाए तो शिकार कर सकते हो। और देखो, एक गिरोह ने जो तुम्हारे लिए प्रतिष्ठित मस्जिद यानी मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया है, तो इस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम भी उनके मुकाबले में अनुचित ज्यादतियां करने लगो। नहीं, जो काम नेकी और तकवा यानी ईश भक्ति के हैं उनमें सबको सहयोग दो, और जो गुनाह और ज्यादती के काम हैं उनमें किसी को सहयोग न दो। अल्लाह से डरो, उसकी सजा बहुत सख्त है।
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सुअर का मांस, वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया हो, वो जो गला घुटकर या चोट खाकर या ऊंचाई से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो, या जिसे किसी हिंसक जानवर ने फाड़ा हो, सिवाय उसके जिसे तुमने जीवित पाकर ज़बह कर लिया, और वो जो किसी थान पर ज़बह किया गया हो, और ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है कि पासों के द्वारा अपना भाग्य मालूम करो। ये सारे काम आदेशोल्लंघन के हैं। आज अधर्मियों को तुम्हारे धर्म की ओर से पूरी मायूसी हो चुकी है, अतः तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया है। अतः हराम और हलाल की जो पाबंदियां तुम पर लगाई गई हैं उनका पालन करो। अलबत्ता जो व्यक्ति भूख से विवश होकर उनमें से कोई चीज खा ले बिना इसके कि गुनाह की ओर उसका रुझान हो, तो निसंदेह अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है।
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين।
लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कहो, तुम्हारे लिए सारी अच्छी स्वच्छ चीजें हलाल कर दी गई हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधाया हो, जिनको अल्लाह के दिए हुए ज्ञान के आधार पर तुम शिकार की शिक्षा दिया करते हो, वे जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको भी तुम खा सकते हो, अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। आज तुम्हारे लिए सारी अच्छी स्वच्छ चीजें हलाल कर दी गई हैं। किताब वालों का भोजन तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा भोजन उनके लिए, और सुरक्षित औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, चाहे वे ईमान वाले गिरोह से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी। शर्त यह है कि तुम उनका महर अदा करके निकाह में उनके रक्षक बनो, न ये कि स्वच्छंद काम तृप्ति करने लगो या चोरी छिपे दोस्तियां करो। और अगर किसी ने ईमान की नीति पर चलने से इनकार किया तो जिंदगी में उसका सारा किया धरा अकारत हो जाएगा और वो आखिरत में दिवालिया होगा।
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون।
ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सिरों पर हाथ फेर लो और पांव टखनों तक धो लिया करो। अगर नहाना अनिवार्य हो तो नहाकर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो, या तुम में से कोई शौच करके आए, या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी ना मिले, तो पाक मिट्टी से काम लो, बस उस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो।
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون।
अल्लाह ने तुमको जो नेमत प्रदान की है उसका ध्यान रखो और उस दृढ़ प्रतिज्ञा को न भूलो जो उसने तुमसे कराई है। अर्थात तुम्हारा ये कथन कि हमने सुना और आज्ञा पालन स्वीकार किया। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के भेद तक जानता है। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो, अल्लाह के लिए औचित्य पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। इंसाफ करो, ये ईश भक्ति और विनम्रता के अधिक अनुकूल है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे पूरी तरह जानता है।
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون।
जो लोग ईमान लाएं और अच्छा काम करें, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि उनकी खताओं को माफ कर दिया जाएगा और उन्हें बड़ा बदला मिलेगा। रहे वे लोग जो इनकार करें और अल्लाह की आयतों को झुठलाएं, तो वे नरक में जाने वाले हैं। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, अल्लाह के उस उपकार को याद करो जो उसने अभी वर्तमान समय में तुम पर किया है, जबकि एक गिरोह ने तुम पर हाथ डालने का इरादा कर लिया था, मगर अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। ईमान रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए।
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ।
अल्लाह ने इसराइल की संतान से दृढ़ प्रतिज्ञा कराई थी और उनमें 12 सरदार मुकर्रर किए थे और उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुमने नमाज कायम रखी और जकात दी और मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की और अपने अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहे, तो यकीन रखो कि मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा और तुमको ऐसे बागों में प्रवेश करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। मगर इसके बाद जिसने तुम में से इनकार की नीति अपनाई, तो हकीकत में उसने समतल व सरल मार्ग को गुम कर दिया। फिर यह उनका अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना था, जिसके कारण हमने उनको अपनी दयालुता से दूर फेंक दिया और उनके दिल कठोर कर दिए। अब उनका हाल ये है कि शब्दों का उलटफेर करके बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जो शिक्षा उन्हें दी गई थी, उसका बड़ा भाग भूल चुके हैं और बराबर तुम्हें उनके किसी न किसी विश्वासघात का पता चलता रहता है। उनमें से बहुत कम लोग इस बुराई से बचे हुए हैं। अतः जब ये इस दशा को पहुंच चुके हैं, तो जो दुष्टता भी ये करें, इनसे उसी की आशा की जा सकती है। अतः उन्हें माफ करो और उनकी बुराइयों से निगाह बचाते रहो। अल्लाह को वे लोग पसंद हैं जो अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं।
وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
इसी तरह हमने उन लोगों से भी दृढ़ प्रतिज्ञा कराई थी जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं मगर उनको भी जो सबक याद कराया गया था उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने भुला दिया आखिरकार हमने उनके बीच कयामत तक के लिए दुश्मनी और पारस्परिक द्वेष का बीज बो दिया और जरूर एक समय आएगा जब अल्लाह उन्हें बताएगा कि वे दुनिया में क्या बनाते रहे हैं ऐ किताब वालों हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया है जो ईश्वरीय ग्रंथ की बहुत सी उन बातों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिन पर तुम पर्दा डाला करते थे और बहुत सी बातों को जाने भी देता है तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रकाश आ गया है और एक ऐसी स्पष्ट किताब जिसके द्वारा अल्लाह उन लोगों को जो उसकी प्रसन्नता के इच्छुक हैं सलामती की राहें बताता है और अपनी अनुमति से उनको अंधेरों से निकालकर उजाले की ओर लाता है और सीधे मार्ग की तरफ उनका पथ प्रदर्शन करता है
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मरियम का बेटा मसीह ही अल्लाह है ऐ नबी उनसे कहो कि अगर अल्लाह मरियम के बेटे मसीह को और उसकी मां और पूरी धरती वालों को विनष्ट कर देना चाहे तो किसकी शक्ति है कि उसको इस इरादे से रोक सके अल्लाह तो जमीन और आसमानों का और उन सब चीजों का मालिक है जो जमीन और आसमानों के बीच पाई जाती हैं, जो कुछ चाहता है पैदा करता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है यहूदी और ईसाई कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हैं उनसे पूछो फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें सजा क्यों देता है वास्तव में तुम भी वैसे ही इंसान हो जैसे और इंसान अल्लाह ने पैदा किए हैं वो जिसे चाहता है माफ करता है और जिसे चाहता है सजा देता है जमीन और आसमान और उनमें पाई जाने वाली सारी चीजों का वही मालिक है और उसी की ओर सबको जाना है ऐ किताब वालों हमारा ये रसूल ऐसे समय में तुम्हारे पास आया है और धर्म की स्पष्ट शिक्षा तुम्हें दे रहा है जबकि रसूलों के आने का सिलसिला एक मुद्दत से बंद था, ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास कोई शुभ समाचार देने वाला और डराने वाला नहीं आया। तो देखो, अब वो शुभ समाचार देने वाला और डराने वाला आ गया, और अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है।
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين
याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हें प्रदान की थी। उसने तुम में नबी पैदा किए, तुमको शासक बनाया और तुमको वो कुछ दिया जो दुनिया में किसी को न दिया था। ऐ मेरी कौम के भाइयों, इस पवित्र भूमि में प्रवेश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। पीछे न हटो वरना नाकाम होकर पलटोगे। उन्होंने जवाब दिया, ऐ मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं, हम वहां हरगिज नहीं जाएंगे जब तक वे वहां से निकल न जाएं। हां, अगर वे वहां से निकल गए तो हम प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। उन डरने वालों में 2 व्यक्ति ऐसे भी थे जिनको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था। उन्होंने कहा कि इन प्रचंड लोगों के मुकाबले में दरवाजे के भीतर घुस जाओ। जब तुम भीतर पहुंच जाओगे तो तुम ही गालिब यानी प्रभावी रहोगे। अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान वाले हो। लेकिन उन्होंने फिर यही कहा कि ऐ मूसा, हम तो वहां कभी ना जाएंगे जब तक वे वहां मौजूद हैं। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहां बैठे हैं। इस पर मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे अधिकार में कोई नहीं मगर निजी रूप में मैं या मेरा भाई, अतः तू हमें इन अवज्ञाकारी लोगों से अलग कर दे। अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा तो वो देश 40 साल तक इनके लिए वर्जित है। ये जमीन में मारे मारे फिरेंगे। इन अवज्ञाकारियों की हाल पर हरगिज तरस न खाओ।
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
और तनिक उन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा भी बिना कमी बेशी के सुना दो. जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की न की गई. उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा. उसने जवाब दिया, अल्लाह परहेजगार लोगों की ही नजरें कबूल करता है. अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ न उठाऊंगा. मैं सारे संसार के रब अल्लाह से डरता हूं. मैं चाहता हूं कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दुजखी बनकर रहे. जालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है. आखिरकार उसके जी ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया और वो उसे मारकर उन लोगों में शामिल हो गया जो घाटा उठाने वाले हैं. फिर अल्लाह ने एक कौआ भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे बता दे कि अपने भाई की लाश कैसे छिपाए. ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर, मैं इस कौआ जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छिपाने का उपाय निकाल लेता. इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
इसी कारण इसराइल की संतान के लिए हमने ये आदेश लिख दिया था कि जिसने किसी इंसान को कत्ल के बदले या जमीन में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल कर डाला, उसने मानो सारे ही इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचाई उसने मानो सारे इंसानों को जीवन दान किया. मगर उनका हाल ये है कि हमारे रसूल निरंतर उनके पास खुले खुले निर्देश लेकर आए, फिर भी उनमें अधिकतर लोग धरती में ज्यादतियां करने वाले हैं. जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और जमीन में इसलिए दौड़ धूप करते फिरते हैं कि बिगाड़ पैदा करें, उनकी सजा ये है कि उनका कत्ल किया जाए या वे सूली पर चढ़ाए जाएं या उनके हाथ पांव विपरीत दिशाओं से काट डाले जाएं या उन्हें देश निकाला दे दिया जाए. ये अपमान और तिरस्कार तो उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए इससे बड़ी सजा है. मगर जो लोग पलट आए इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है.
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और उसका सामीप्य प्राप्त करने का साधन तलाश करो और उसके मार्ग में जान तोड़ संघर्ष करो, शायद कि तुम्हें सफलता मिल जाए. अच्छी तरह जान लो कि जिन लोगों ने अधर्म की नीति अपनाई है अगर उनके अधिकार में सारी जमीन की दौलत हो और उतना ही और उसके साथ, और वे चाहें कि उसे बदले में देकर कयामत के दिन की यातना से बच जाएं, तब भी वो उनसे स्वीकार न किया जाएगा और उन्हें दर्दनाक सजा मिलकर रहेगी। वे चाहेंगे कि दोजख की आग से निकल भागें, मगर न निकल सकेंगे और उन्हें कायम रहने वाला अजाब दिया जाएगा।
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير।
और चोर चाहे औरत हो या मर्द, दोनों के हाथ काट दो। ये उनकी कमाई का बदला है और अल्लाह की ओर से शिक्षा प्रद सजा। अल्लाह की सामर्थ्य सब पर प्रभावी है और वो जानता और देखता है। फिर जो जुल्म करने के बाद तौबा करे और अपने को सुधार ले, तो अल्लाह की कृपा दृष्टि फिर उसकी ओर लौट जाएगी। अल्लाह बहुत क्षमाशील और दयावान है। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह जमीन और आसमानों के राज्य का अधिकारी है? जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ कर दे, उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है।
या अय्युहर रसूल ला यहजुनक الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم।
ऐ पैगंबर, तुम्हारे लिए रंग व तकलीफ होने का कारण ना हो वे लोग जो कुफ्र के मार्ग में बड़ी तेज चाल दिखा रहे हैं, भले ही वे उनमें से हों जो मुंह से कहते हैं हम ईमान लाए, मगर दिल उनके ईमान नहीं लाए, या उनमें से हों जो यहूदी बन गए हैं, जिनका हाल यह है कि झूठ के लिए कान लगाते हैं और दूसरे लोगों के लिए जो तुम्हारे पास कभी नहीं आए सुनगुन लेते फिरते हैं, और अल्लाह की किताब के शब्दों को उनका ठीक स्थान निश्चित होने के बावजूद वास्तविक अर्थ से फेरते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये आदेश दिया जाए तो मानो, नहीं तो ना मानो। जिसे अल्लाह ही ने आपदा में डालने का इरादा कर लिया हो, उसको अल्लाह की पकड़ से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। ये वे लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना न चाहा, उनके लिए दुनिया में भी अपमान है और आखिरत में सख्त सजा।
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين।
ये झूठ सुनने वाले और हराम के माल खाने वाले हैं, अतः अगर ये तुम्हारे पास अपने मुकदमे लेकर आए तो तुम्हें अधिकार दिया जाता है कि चाहो तो इनका फैसला करो, वरना इनकार कर दो। इनकार कर दो तो ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और फैसला करो तो फिर ठीक ठीक इंसाफ के साथ करो, कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और ये तुम्हें कैसे निर्णायक बनाते हैं जबकि इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का आदेश लिखा हुआ है, और फिर ये उससे मुंह मोड़ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते।
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون।
हमने तौरात उतारी जिसमें हिदायत और रोशनी थी। सारे नबी जो मुस्लिम यानी आज्ञाकारी थे उसी के अनुसार इन यहूदियों के मामलों का फैसला करते थे, और इसी तरह धर्माधिकारी और शास्त्रवेत्ता भी इसी को फैसले का आधार बनाते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह की किताब की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया था और वे उस पर गवाह थे। अतः ए यहूदी गिरोह, तुम लोगों से न डरो बल्कि मुझसे डरो, और मेरी आयतों को थोड़े थोड़े से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो। जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला न करें वही अधर्मी हैं।
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون।
तौरात में हमने यहूदियों पर यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और सब जख्मों के लिए बराबर का बदला। फिर जो बदले यानी कसास को दान कर दे तो वो उसके लिए कफ्फारा यानी प्रायश्चित होगा। और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला ना करें वही जालिम हैं। फिर हमने इन पैगंबरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा। तौरात में से जो कुछ उसके सामने मौजूद था वो उसकी पुष्टि करने वाला था, और हमने उसे इंजील प्रदान की जिसमें रहनुमाई और रोशनी थी, और वो भी तौरात में से जो कुछ उस समय मौजूद था उसकी पुष्टि करने वाली थी, और अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन और नसीहत थी। हमारा आदेश था कि इंजील वाले उस कानून के अनुसार फैसला करें जो अल्लाह ने उसमें उतारा है, और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला ना करें वही पाबंदी तोड़ने वाले यानी फासिक हैं।
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
फिर ए नबी, हमने तुम्हारी ओर ये किताब भेजी जो हक यानी सत्य लेकर आई है, और मूल किताब में से जो कुछ उसके आगे मौजूद है उसकी पुष्टि करने वाली और उसकी संरक्षक है। अतः तुम अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार लोगों के मामले का फैसला करो, और जो हक यानी सत्य तुम्हारे पास आया है उससे मुंह मोड़कर उनकी इच्छाओं का पालन न करो। हमने तुम इंसानों में से हर एक के लिए एक धर्म विधान और कार्य प्रणाली निर्धारित की। यद्यपि अगर तुम्हारा अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत यानी समुदाय भी बना सकता था, लेकिन उसने ये इसलिए किया कि जो कुछ उसने तुम लोगों को दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। अतः भलाइयों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश करो। आखिरकार तुम सबको अल्लाह की ओर पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें असल हकीकत बता देगा जिसमें तुम मतभेद करते रहे हो।
وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
اتہ اے نبی، تم اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے انصار ان لوگوں کے معاملوں کا فیصلہ کرو और इनकी इच्छाओं का पालन न करो। सावधान रहो कि ये लोग तुम्हें फरेब में डालकर उस मार्गदर्शन से तनिक भी फेरने न पाएं जो अल्लाह ने तुम्हारी ओर अवतरित किया है। फिर अगर ये उससे मुंह मोड़ें तो जान लो कि अल्लाह ने इनके कुछ गुनाहों के बदले में इनको मुसीबत में डालने का इरादा ही कर लिया है, और ये हकीकत है कि इन लोगों में से अधिकतर उल्लंघनकारी हैं। अगर ये अल्लाह के कानून से मुंह मोड़ते हैं तो क्या फिर अज्ञान का फैसला चाहते हैं? हालांकि जो लोग अल्लाह को मानते हैं उनके नजदीक अल्लाह से अच्छा फैसला करने वाला और कौन हो सकता है?
या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ساتھی اور مطر نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے مطر ہیں، और अगर तुम में से कोई उनको अपना मित्र बनाता है तो उसकी गिनती भी फिर उन्हीं लोगों में से है। यकीनन अल्लाह जालिमों को सीधे रास्ते से महरूम कर देता है। तुम देखते हो कि जिनके दिलों में कपटाचार का रोग है वे उन्हीं में दौड़ धूप करते फिरते हैं। कहते हैं, हमें डर लगता है कि कहीं हम किसी मुसीबत के चक्कर में न फंस जाएं। मगर असंभव नहीं कि अल्लाह जब तुम्हें निर्णायक विजय प्रदान करेगा या अपनी ओर से कोई और बात सामने लाएगा तो ये लोग अपने उस कपटाचार पर जिसे ये मन में छुपाए हुए हैं लज्जित होंगे, और उस समय ईमान वाले कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर विश्वास दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। इनका सारा किया धरा अकारत गया और आखिरकार ये असफल होकर रहे।
يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون।
اے لوگو جو ایمان لائے ہو, अगर तुम में से कोई अपने धर्म से फिरता है तो फिर जाए, अल्लाह और बहुत से लोग ऐसे पैदा कर देगा जो अल्लाह को प्रिय होंगे और अल्लाह उनको प्रिय होगा, जो ईमान वालों पर नरम और अधर्मियों के लिए कठोर होंगे, जो अल्लाह के मार्ग में जान तोड़ कोशिश करेंगे और किसी भर्त्सना करने वाले की निंदा से न डरेंगे। अल्लाह का ये अनुग्रह है, जिसे चाहता है प्रदान करता है। अल्लाह विस्तृत साधनों का मालिक है और सब कुछ जानता है। तुम्हारे मित्र तो वास्तव में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल, और वे ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं, जकात देते हैं और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को अपना मित्र बना ले, उसे मालूम हो कि अल्लाह की जमात ही प्रभावी होकर रहने वाली है।
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل।
اے لوگو جو ایمان لائے ہو, तुमसे पहले के किताब वालों में से जिन लोगों ने तुम्हारे धर्म को हंसी और मनोरंजन का सामान बना लिया है, उन्हें और दूसरे अधर्मियों को अपना दोस्त और साथी न बनाओ। अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वे उसकी मजाक उड़ाते और उससे खेलते हैं। इसका कारण यह है कि वे बुद्धिहीन हैं। इनसे कहो, ऐ किताब वालों, तुम जिस बात पर हमसे बिगड़े हो वो इसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह पर और धर्म की उस शिक्षा पर ईमान लाए हैं जो हमारी ओर अवतरित हुई है और हमसे पहले भी अवतरित हुई थी, और तुम में से अक्सर लोग फासिक यानी उल्लंघनकारी हैं। फिर कहो, क्या मैं उन लोगों को बताऊं जिनका परिणाम अल्लाह के यहां फासिकों यानी उल्लंघनकारियों से भी बुरा है? वे जिन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी, जिन पर उसका प्रकोप हुआ, जिनमें से बंदर और सुअर बन गए, जिन्होंने बढ़े हुए फसादी यानी ताहूत की बंदगी की, उनका दर्जा और भी ज्यादा बुरा है और वे सीधे समतल मार्ग से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं।
وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ انکار لیے ہوئے آئے تھے اور انکار ہی لیے ہوئے واپس گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں तुम देखते हो कि इनमें से बहुतेरे लोग गुनाह और जुल्म व ज्यादती के कामों में दौड़ धूप करते फिरते हैं और हराम के माल खाते हैं बहुत बुरे कर्म हैं जो ये कर रहे हैं क्यों इनके धर्म ज्ञाता और बड़े लोग इन्हें गुनाह पर जबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते यकीनन बहुत ही बुरी कृति है जो वे तैयार कर रहे हैं यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं बांधे गए इनके हाथ और फिटकार पड़ी इन पर उस बकवास के कारण जो ये करते हैं अल्लाह के हाथ तो खुले हुए हैं जिस पर चाहता है खर्च करता है हकीकत यह है कि जो कलाम यानी वाणी तुम्हारे रब की ओर से तुम पर अवतरित हुआ है वो उनमें से बहुतेरे लोगों की सरकशी और अधर्म में उल्टे बढ़ावे का कारण बन गया है और उसके बदले में हमने इनके बीच कयामत तक के लिए दुश्मनी और नफरत डाल दी जब कभी ये युद्ध की आग भड़काते हैं अल्लाह उसे ठंडा कर देता है ये जमीन में बिगाड़ फैलाने का जतन कर रहे हैं परंतु अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों को हरगिज पसंद नहीं करता
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون
اگر اس سرکشی کے بدلے یہ کتاب والے ایمان لے آتے اور ایش بھکتی و ونمرتا کی نیتی اپناتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے और इनको नेमत भरी जन्नतों में पहुंचाते क्या ही अच्छा होता कि इन्होंने तौरात और इंजील और दूसरी किताबों को कायम किया होता जो इनके रब की ओर से इनके पास भेजी गई थी ऐसा करते तो इनके लिए ऊपर से रोजी बरसती और नीचे से उबलती यद्यपि इनमें कुछ लोग ठीक चल रहे हैं लेकिन इनमें अधिकतर बड़े ही दुष्कर्मी हैं
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی اور سے تم پر اوترت ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا اللہ تم کو لوگوں کی برائی سے بچانے والا ہے یقین رکھو کہ وہ ادھرمیوں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا صاف کہہ دو کہ اے کتاب والو تم ہرگز کسی آدھار پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری اور تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں ضرور ہی یہ آدیش جو تم پر تمہارے رب کی اور سے اتارا گیا ہے ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور انکار کو اور بڑھا دے گا مگر انکار کرنے والوں کے حال پر بالکل دکھی نہ ہو وشواس کرو کہ یہاں ٹھیکے داری کسی کی بھی نہیں ہے مسلمان ہوں یا یہودی سابی ہوں یا عیسائی جو بھی اللہ اور انتم دن کو مانے گا اور اچھے کرم کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا
لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
ہم نے اسرائیل کی سنتان سے دڑھ پرتگیا کرائی اور ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی اچھاؤں کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی وپتی نہ آئے گی اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے ادھکتر لوگ اور ادھک اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے اللہ ان کی یہ سب کرتوتیں دیکھتا رہا ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مریم کا بیٹا مسیح ہی ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے اسرائیلیو اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون
يقينا كفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی ایشور نہیں ہے अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज न आए तो इनमें से जिस जिसने कुफ्र किया उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे और उससे माफी न मांगेंगे? अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। मरियम का बेटा मसीह इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल था। उससे पहले और भी बहुत से रसूल हो चुके थे। उसकी मां एक सत्यवती औरत थी और वे दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस तरह उनके सामने यथार्थ की निशानियां स्पष्ट करते हैं, फिर देखो ये किधर उल्टे फेरे जाते हैं।
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत करते हो जो न तुम्हारे नुकसान का अधिकार रखता है न नफा का। हालांकि सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला तो अल्लाह ही है। कहो ए किताब वालो, अपने धर्म में नाहक सीमा से आगे ना बढ़ो और उन लोगों की कल्पनाओं और विचारों का अनुसरण ना करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सीधे समतल मार्ग से भटक गए।
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون।
इसराइल की संतान में से जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई उन पर दाऊद और मरियम के बेटे ईसा की जबान से लानत की गई, क्योंकि वे सरकश व उद्दंड हो गए थे और ज्यादतियां करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे कर्मों के करने से रोकना छोड़ दिया था। बुरी कार्य प्रणाली थी जो उन्होंने अपनाई। आज तुम उनमें बहुतेरे ऐसे लोग देखते हो जो ईमान वालों के मुकाबले में अधर्मियों का साथ देते और उनसे मित्रता का संबंध जोड़ते हैं। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी उनके जी यानी नफ्सों ने उनके लिए की है। अल्लाह उन पर क्रुद्ध हो गया है और वे हमेशा के अजाब में पड़ने वाले हैं। अगर वास्तव में ये लोग अल्लाह और पैगंबर और उस चीज के मानने वाले होते जो पैगंबर पर उतरी थी तो कभी ईमान वालों के मुकाबले में अधर्मियों को अपना साथी न बनाते। मगर उनमें से तो बहुत से लोग अल्लाह के आज्ञा पालन से निकल चुके हैं। तुम ईमान वालों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त यहूदियों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को पाओगे और ईमान वालों के लिए दोस्ती में सबसे करीब उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। ये इस कारण कि उनमें इबादत करने वाले आलिम और दुनिया छोड़ने वाले साधु व फकीर पाए जाते हैं और उनमें अहंकार नहीं है।
الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
جب وے اس وانی کو سنتے ہیں جو رسول پر اتری ہے तो तुम देखते हो कि सत्य की पहचान के प्रभाव से उनकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। वे बोल उठते हैं कि पालनहार हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। और वे कहते हैं कि आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाएं और जो सत्य हमारे पास आया है उसे क्यों ना मान लें, जबकि हम इस बात की इच्छा रखते हैं कि हमारा रब हमें अच्छे भले लोगों में शामिल करे। उनके ये कहने के कारण अल्लाह ने उनको ऐसे बाग प्रदान किए जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वे उनमें हमेशा रहेंगे। ये बदला है अच्छी नीति अपनाने वालों के लिए। रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया और उन्हें झुठलाया, तो वे जहन्नम के अधिकारी हैं।
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور سیما کا الگھن نہ کرو، अल्लाह को ज्यादती करने वाले सख्त नापसंद हैं। जो कुछ हलाल और अच्छी रोजी अल्लाह ने तुम्हें दी है उसे खाओ पियो और उस अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो।
كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
تم لوگ جو نرثک قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ نہیں پکڑتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہیں پکڑے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یعنی پرائشچت یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا وہ کھانا کھلاؤ جو کھانا تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام کو آزاد کرو اور جسے اس کی سامرتھ نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی رکشا کیا کرو۔ اس طرح اللہ अपने आदेश तुम्हारे लिए स्पष्ट करता है, शायद कि तुम कृतज्ञता दिखाओ।
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ دیو ستھان اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو، امید ہے کہ تمہیں سفلتا پراپت ہوگی. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے دوارا تمہارے بیچ دشمنی اور نفرت و دویش ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے اوہیلنا کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف آدیش پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی. شرط یہ ہے کہ وہ آگے ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام ٹھہرائی گئی ہیں، اور ایمان پر جمے رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو ایشوری آدیش ہو اسے مانیں. پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھی نیتی اپنائیں. اللہ اچھے چرتر والوں کو پسند کرتا ہے.
ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے دوارا کڑی پریکشا میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور بھالوں کی پہنچ میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے. پھر جس نے اس چیتاونی کے بعد اللہ کی نشچت کی ہوئی سیماؤں کا اُلنگھن کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو. اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر جائے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی جیسا ایک جانور اسے چوپایوں میں سے بھینٹ کرنا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف کرنے والے آدمی کریں گے، اور یہ بھینٹ کعبہ پہنچایا جائے گا. یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں کچھ محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے ایسا پھر کیا تو اسے اللہ بدلہ لے گا. اللہ پربھتوشالی اور بدلہ لینے کی سامرتھ رکھتا ہے.
احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے راہ خرچ بھی بنا سکتے ہو. البتہ ستھل کا شکار جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو तुम पर हराम किया गया है। अतः बचो उस अल्लाह की नाफरमानी से जिसके सामने तुम सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। अल्लाह ने आदरणीय घर यानी काबा को लोगों के लिए सामूहिक जीवन की स्थापना का साधन बनाया और आदरणीय महीनों और कुर्बानी के जानवरों और कलादों यानी वे चीजें जो जानवरों की गर्दन में लटकाई जाती हैं को भी इस कार्य में सहायक बना दिया, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमानों और जमीन के सब हाल को जानता है और उसे हर चीज का ज्ञान है।
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون।
सावधान हो जाओ, अल्लाह सजा देने में भी कठोर है और इसके साथ बहुत क्षमाशील और दयावान भी है। रसूल की जिम्मेदारी तो सिर्फ संदेश पहुंचा देने की है, आगे तुम्हारी खुली और छिपी हालतों का जानने वाला अल्लाह है। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि पाक और नापाक किसी भी हाल में समान नहीं हैं, चाहे नापाक की बहुतायत तुम्हें कितनी ही रिझाने वाली हो। अतः ऐ लोगों जो बुद्धिमान हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो, उम्मीद है कि तुम्हें सफलता प्राप्त होगी।
وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون।
اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر کھول دی جائیں تو تمہیں नागवार लगें। लेकिन अगर तुम उन्हें ऐसे समय पूछोगे जबकि कुरान अवतरित हो रहा हो तो वे तुम पर खोल दी जाएंगी। अब तक जो कुछ तुमने किया उसे अल्लाह ने माफ कर दिया, वो माफ करने वाला और सहनशील है। तुमसे पहले एक गिरोह ने इसी प्रकार के सवाल किए थे, फिर वे लोग इन्हीं बातों के कारण अधर्म में जा पड़े। अल्लाह ने न कोई बहीरा ठहराया है, न साइबा और न वसीला और न हाम, मगर ये अधर्मी अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं और उनमें से बहुतेरे बुद्धिहीन हैं कि ऐसे अंधविश्वास में पड़े हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की ओर जो अल्लाह ने उतारा है और आओ पैगंबर की ओर, तो वे जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये बाप दादा ही का अनुसरण किए चले जाएंगे, चाहे वे कुछ न जानते हों और ठीक मार्ग का उन्हें पता ही न हो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी चिंता करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता यदि तुम खुद सीधे मार्ग पर हो। अल्लाह की ओर तुम सबको पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो।
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم میں سے کسی کی موت کا سمے آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے گواہی کی پرکریا یہ ہے کہ تمہارے گروہ میں سے دو نیائے پری آدمی گواہ بنائے جائیں, یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی سندیہ اتپن ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ویکتیگت لاب کے بدلے گواہی بیچنے والے نہیں ہیں, اور چاہے کوئی ہمارا ناتے دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں, اور نہ اللہ کے واسطے ہی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں ہماری گنتی ہوگی.
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال لیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور ویکتی جو ان کی اپیکشا گواہی دینے کے زیادہ یوگی ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہو, اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے, اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ امید رہتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے, یا کم سے کم اس بات سے ڈریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کا کھنڈن نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو, اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے ونچت کر دیتا ہے.
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
جس دن اللہ سب رسولوں کو اکٹھا کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ گیان نہیں, آپ ہی سب چھپی حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر کلپنا کرو اس افسر کی جب اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو پردان کی تھی, میں نے پوتر آتما سے تیری سہایتا کی, تو پالنے میں بھی لوگوں سے بات چیت کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی, मैंने तुझको किताब और गहरी समझ और तौरात और इंजील की तालीम दी। तू मेरी अनुमति से मिट्टी का पुतला पक्षी के रूप का बनाता और उसमें फूंकता था और वो मेरी अनुमति से पक्षी बन जाता था। तू पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को मेरी अनुमति से अच्छा करता था। तू मुर्दों को मेरी अनुमति से निकालता था। फिर जब तू इसराइल की संतान के पास खुली निशानियां लेकर पहुंचा और जिन लोगों को सत्य से इनकार था उन्होंने कहा कि ये निशानियां जादूगरी के सिवा और कुछ नहीं हैं, तो मैंने ही तुझे उनसे बचाया। और जब मैंने हवारियों यानी मसीह के साथ वालों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हैं।
إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين।
हवारियों के संबंध में ये घटना भी याद रहे कि जब हवारियों ने कहा, ए मरियम के बेटे ईसा, क्या आपका रब हम पर आसमान से खाने से भरा थाल उतार सकता है? तो ईसा ने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा, हम बस ये चाहते हैं कि उस थाल से खाना खाएं और हमारे दिल संतुष्ट हों और हमें मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ हमसे कहा है वो सच है और हम उस पर गवाह हों। इस पर मरियम के बेटे ईसा ने दुआ की, ए अल्लाह हमारे रब, हम पर आसमान से एक थाल उतार जो हमारे लिए और हमारे अगले पिछलों के लिए खुशी का अवसर ठहरे और तेरी ओर से एक निशानी हो, हमें रोजी दे और तू बेहतरीन रोजी देने वाला है। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं उसको तुम पर उतारने वाला हूं, मगर इसके बाद जो तुम में इनकार की नीति अपनाएगा उसे मैं ऐसी सजा दूंगा जो मैंने किसी को न दी होगी।
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد।
سارانش ये कि जब ये एहसान याद दिलाकर अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी मां को भी ईश्वर बना ले? तो वो जवाब में कहेगा कि पाक है अल्लाह, मेरा ये काम न था कि वो बात कहता जिसके कहने का मुझे अधिकार न था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको जरूर मालूम होता। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में है। आप तो सारी छिपी हकीकतों की ज्ञाता हैं। मैंने उनसे इसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने आदेश दिया था, ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। मैं उसी समय तक उनका निगरान था जब तक मैं उनके बीच था। जब आपने मुझे वापस बुला लिया तो आप उन पर निगरान थे और आप तो सारी ही चीजों पर निगरान हैं।
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
अब अगर आप उन्हें सजा दें तो वे आपके बंदे हैं और अगर माफ कर दें तो आप प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी हैं। तब अल्लाह कहेगा, ये वो दिन है जिसमें सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा पहुंचाती है। उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यहां वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से, यही बड़ी सफलता है। जमीन और आसमानों और जो कुछ उनमें है, सबकी बादशाही अल्लाह ही के लिए है और वो हर चीज की कुदरत रखता है।